चतुरता माधुरी एव व्रजे एव विरासी। भगवान श्री कृष्ण की चार प्रकार की मधुरी में केवल ब्रज में, जिसमें प्रथम है रूप माधुरी। भगवान कृष्ण जो वृंदावनेश्वर अपने मूल रूप में जो ब्रज में सुंदरता प्रकट किए हैं, वो और कहीं मथुरा द्वारिका या अन्य विष्णु वंश में तो है ही नहीं, विशेष है। दूसरा है वेणु माधुरी, वेणु बजाना। ये ब्रज के बाहर वेणु नहीं बजती, द्वारिका में कभी भगवान वेणु नहीं बजाते, और विष्णु फॉर्म में तो प्रश्न ही नहीं। और धाम माधुरी, ये जो ब्रज में जो लीला करते हैं जिस तरह वात्सल्य या साख्य, उस तरह का साख्य द्वारिका में जैसे उद्धव भी सखा है, लेकिन जैसे मधुमंगल और श्रीधाम सखा है ऐसे नहीं। उद्धव कभी कृष्ण के कंधे पर नहीं चढ़ सकते, लेकिन ये चढ़ जाते हैं। साख्य है लेकिन लिमिट है, मर्यादा है, और अन्य अवतारों की तो बात ही नहीं है। राम के भी सखा थे सुग्रीव, विभीषण, कभी राम को घोड़ा नहीं बना सकते, लेकिन ये सखा लोग घोड़ा बना देते कृष्ण। और प्रेम माधुरी, भगवान कृष्ण का विलक्षण प्रेम है सभी रस में, वात्सल्य माधुर्य या कोई भी रस। तो ये ब्रजे एव विरासी, तो केवल ब्रज में ये बात और कहीं नहीं, और किसी और अवतार में भी नहीं। शायद इस तत्व को मेहता नरसिंह जानते थे, इसीलिए उन्होंने गाया मारू बन ब्राह्मण सर। वैकुंठ में भगवान विष्णु कभी बंसी नहीं बजाएंगे न रास खेलेंगे, वहां तो बस जय जगदीश हरे का नाम। देखिए आप माताओं को विशेष धन्यवाद, और आपकी दया के हम प्रभु जीवों को भी आपने स्थान दिया। ऐसे स्थान प्रभु जी का ही होता है, लेकिन माताएं आ जाती है फिर शासन जमा देती है, फिर जाने आने नहीं देती, लेकिन आप लोग दयालु है। पहले तो किसका होता है, उनका ही होता है, लेकिन फिर सब हवाला है, चाबी इधर आ जाता है, फिर इनको भी पूछना पड़ता है। लेकिन मैंने कहा कि माताओं का क्लास तो एक टाइम था, फिर एक्स्ट्रा दो दिन तो हमारी ओर से बड़ा है, तो हम किसी को भी आना नहीं दे सकते। और कृष्ण कथा के लिए तो सबका अधिकार है, और आप लोग भी सुधारना चाहते हैं तो यही करना चाहिए, प्रभु जी को आने देना चाहिए क्लास। ब्राह्मण लोग कभी क्लास में नहीं गए, इसीलिए दुर्दशाधीन लोग। ये मथुरा के पंडे कभी क्लास में नहीं गए, बस यही प्रॉब्लम था, ये सब कथा सुनती थी, ये पंडा लोग सुने ही नहीं थे, इसीलिए तकलीफ हो गया ना। अगर सुने होते तो इतना दिक्कत नहीं था। तो जैसे ही उस यज्ञशाला में उस मित्र भार्य ने देखा कि कृष्ण के सखा है, तो इस पर एक विचार देकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। नमो द्विज पत्नीभ्यो, वो भी उसको प्रणाम किए विप्र पत्नी कहकर, भगवान के सखा। और ये पत्नियां कृष्ण के विषय में सुनी थी, तो कृष्ण की बातें कभी अकेले नहीं होती, कृष्ण की कथा करो तो उनके सखा होगी, सखी होगी, सब कथा होगी, है ना। भक्त की कथा साथ में हो ही जाती है, और भक्त की कथा करो तो भगवान की कथा होती है, एक सीटी तो बाजू है वो। तो मतलब ये कृष्ण के विषय में सुनी थी, तो कृष्ण के सखा के विषय में भी सुनी थी, क्योंकि भगवान रोज गोचारण के लिए सखाओं के साथ ही आते थे। और जब देखी कि कृष्ण के सखा है, तो कृष्ण प्रेमी, कृष्ण भक्त, कृष्ण संगी का दर्शन करके अपने आप को बहुत ही कृतार्थ मान लिया अपने आप, और उसको एक विश्वास हुआ कि भगवान के भक्त का दर्शन हुआ है तो भगवान का भी होगा, क्योंकि तो भगवान जिसको भी दर्शन देते हैं अपने भक्तों के माध्यम से देते हैं। यस्य प्रसादात, ये इनका रीति है, जो भी कहे कृष्ण का यह स्वभाव। और दूसरी बात कि सब कुछ उठाकर चल दी साथ में, जैसे कल हमने सुना चतुर्विधम बहुगुणम अन्नमादाय भाजने, सुखदेव जी कहते कि चार प्रकार के सभी गुणों रस से परिपूर्ण उस भोजन को लेकर उठाकर आदाय चल दी सखाओं के साथ। देखिए एक भारतीय नारी के लिए एक शिक्षा है यहाँ, आर्यव्रत के संस्कार जिसको परंपरा में है उन स्त्रियों के विषय में, कि कोई भी घर पर आए अतिथि उसमें भी भूखा हो तो उसको बिना भोजन के नहीं जाने देना चाहिए, कैसी भी घर की अवस्था हो, कुछ भी तो होता है, कुछ तो होता है ना। ये लोग भूखे हैं, उसमें बच्चे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन मान लीजिए बच्चे ना हो, बड़े हो, फिर भी वो भूखे हैं तो अधिकारी है। गृहस्थ धर्म ये बताता है कि गृहस्थ के आंगन से, उनके घर से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, उसमें भी विशेषकर अतिथि, उसमें भी विशेषकर वैष्णव, उसमें भी ऐसा ऐसा वैष्णव कृष्ण का एकदम भाई, तब तो क्या कहें। नहीं तो हमारे वेद कहते हैं कि अतिथि यस्य भग्नाश विहात परिवर्तते, जिस घर से कोई साधु भूखा चला जाए, भग्नाश मतलब उसकी इच्छा पूरी ना हो और जाना पड़े उसको, तो तस्मै दुष्कृति दत्वा पुण्यमादाय गच्छति, वो अपना पाप दुष्कर्म डाल के जाता है और उस घर का जो पुण्य है वो लेके चला जाता है। वो करता नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा हो जाता है नेचुरली ऐसा होने पर। और जहां तक ब्रज की बात है, ब्रज की नारियों को ये बचपन से ही माता पिता के द्वारा ही संस्कार दिया जाता था कि कोई भी साधु वहाँ, और भी मधुकरी करने वाले, आज भी आप ब्रज में जाएंगे कई साधु है भजन करते हैं, नीमी पर खाकर जो भी मिले जी लेते हैं। लेकिन इन लोगों को ये सिखाया गया है कि घर से कोई बिना रोटी के बिना खाने के नहीं जाना चाहिए। शहरों में तो आज मुश्किल हो गया है, अस्कारी घुसने में दे रहे हो क्या देगी है ना, और उन सब साधु के वेश में पाखंडी भी आकर गड़बड़ करते हैं, सब जगह कलयुग है। लेकिन फिर भी एक स्त्री इस तरह शास्त्रों से धर्म का निर्वाह करे तो उसके धर्म पालन से उसके पति की, पुत्रों की सुरक्षा होती है, प्रगति होती है, क्योंकि जो आशीर्वाद धर्म के द्वारा मिलता है उसी से तो सफलता मिलती है परिवार में। तो ये तो सब ब्राह्मण नारियां थी, ऐसे भी जानती थी भूखा नहीं जाने देना है, ऊपर से ये भी बच्चे हैं, और बच्चे और भूखे साइड कृष्ण के सखा है। कई राज्य में ये भी लिखा है, जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजय राज, वो भजन में इनका भी जय है, और क्यों ना जय हो, आखिर ब्रह्मांड अधिनायक है श्री कृष्ण, लेकिन ये लोग उसको घोड़ा बना के ऊपर चढ़ने वाले सखा है, सामान्य नहीं है ना। जिस भगवान कृष्ण के चरणों से गंगा निकली है, जिस शिव जी के चरणों का ध्यान महादेव करते हैं, और उस कृष्ण के ब्रज में भी लाखों करोड़ों देवता आकर माथा टेकते ही रहते थे, पूरी बहिरंगा शक्ति जिनकी फल्गु शक्ति है केवल अंश मात्र कला है, और वे भगवान कृष्ण के साथ ये सखा खेलने वाले क्या, मार खाने वाले। कृष्ण इनके हाथ का रोज पिटाई होता था कृष्ण का, सखाओं के साथ मधुमंगल या श्रीदाम कोई भी कृष्ण को पीटता था बढ़िया से। तो विचार करिए, कोई सामान्य नहीं है ना ये सखा। वृंदावन के भजनों में गाया गया है कि ब्रह्मा मोह कियो पछताए, आप सबने सुना कि ब्रह्मा आए थे और उसको मोह हो गया और फिर प्रणाम किए, माफी मांगे। इंद्र भी थोड़े अभिमान में आकर वो गिरिराज लीला में तो मान इंद्र को दूर भगाए, इंद्र का भी मान उतर गया, ब्रह्मा का मोह उतर गया। दर्शन को शिव ब्रज में आयो, कैलाश छोड़कर भगवान शिव उस कृष्ण का दर्शन करने के लिए आते हैं वृंदावन। ऐसो वैभव वालो, कृष्ण इतने ऐश्वर्यवान है लेकिन ग्वाल सखा संग खेलन में पिट जाए, लेकिन ऐसे कृष्ण को ये सखा लोग पिटते थे। और चैतन्य महाप्रभु भी चरितामृत में ये आस्वादन किए हैं साख्य रस का, सखा मोरेस साख्य करेस कंधे आरोहण, सखा मुझे अपना मित्र समझकर मेरे कंधे पर चढ़ जाते, मुझे अच्छा लगता है, भगवान खुश होते हैं उस साख्य रस की पूर्ति से। अर्जुन आदि के साथ, उद्धव आदि के साथ, या राम आदि अवतारों में, या विष्णु अवतारों में, ये सब नहीं है, इस तरह का साख्य नहीं है। साख्य तो है लेकिन लिमिट है, लेकिन यहाँ पूर्ण साख्य है ब्रज में। तो ये सुनी है सर, जब कथा सुनती थी जटन पत्नी है तो सुनती थी ना कि कृष्ण आज गोचारण करते हुए काम वन में आए और इस तरह ये सखा इसका चरण दबा रहा है, कोई सखा के गोदी का तकिया बनाकर शाम सुंदर आराम करते हैं, तो कथा होती तो सखाओं की सखा का साथ में कथा होती है। और उसको आज सौभाग्य मान रही कि ये हमारे प्रियतम के साथ खेलने वाले, उनको सुख देने वाले, उनको आनंद देने वाले आ जाए, तो निश्चित है आज भगवान आज हमें उसके दर्शन कराने के लिए आए। वास्तव में मांगने नहीं आए हैं, देने आए हैं हमको भगवान। एक विचार किया जाए कि ये सखा मांगने आए हैं, मांगने तो बहाना था, वास्तव में इन लोगों को जो वर्षों से जो अभिलाषा थी कृष्ण दर्शन की वो पूरा करने आए हैं, कृष्ण के पास ले जाने आए हैं कि चलिए कृष्ण के पास। तो इस तरह समझना चाहिए हम गृहस्थों को या स्त्रियों को कि जो भी हो परिस्थिति घर की, ऐसा नहीं कि मेवा पकवान बनाया जाए, सूखी रोटी जो भी हो, लेकिन साहेब इतना दीजिए, जामे कुटुंब समय मैं भी भूखा ना मसा दूं। ऐसे गुजरा हमारे इंडिया में ये कवि की पंक्ति बड़ी चलती है, लेकिन इसके भाव को शास्त्र से मिलान करते हुए इस प्रसंग से हम सुने तो समझ में आता है हमें भगवान के भक्तों का दर्शन लक्षण है, एक कंफर्मेशन है भगवान के दर्शन का। हनुमान जी गए लंका में तो विभीषण ने देखकर कहा कि अब राम के दर्शन होंगे, क्योंकि आपके दर्शन हुए ना बिन हरि कृपा, नहीं तो हनुमान जी आपके दर्शन हुए ये मुझे भरोसा हो गया कि अब मुझे राम के दर्शन, क्योंकि भगवान जिसे मिलना चाहते हैं, दर्शन देना चाहते हैं, कृपा करना चाहते हैं, उन्हें अपने भक्तों से मिलाते हैं। साधारण बात नहीं, बड़ी सिद्धांत की बात। तो सब उठाकर चल दिए कृष्ण के, कृष्ण के विषय में सुखदेव जी कहते हैं मुखाब जहासम, ये कुछ शोक में कुछ चिंता में थी क्योंकि बड़ा साहस करके आई थी, सब तिलांजलि देकर पति को, लोक वेद मर्यादा सबको, और वापस जाने के लिए भी नहीं आई थी, रिटर्न टिकट नहीं था वृंदावन का क्योंकि छोड़कर आई थी सर, तो थोड़ा तो भाई संकोच स्त्री हृदय रहता है, लेकिन भगवान का हंसता हुआ मुख देखकर सब शोक सब चिंता सब टेंशन आउट, भगवान इसीलिए हंस रहे मानो स्वीकार कर रहे थे बढ़िया काम किया है, कब सीखेंगे दुनिया वाले आप लोगों से कि यही जीवन का दर्शन, आप लोग भाई सही हो, हास्य से ये भगवान व्यक्त कर रहे हैं। ये है ना, मान लीजिए आपके घर को आए तो आपके मुख से ही पता चल जाता कि पसंद आया कि हमारा आना इनको अच्छा लगा कि नहीं, कुछ लोग तो ड्रामाबाज बढ़िया होते हैं नहीं पता चलने देते, ऐसे कहते हैं हाँ प्रभु जी अंदर से तो क्या है मंद नहीं आता हमको, क्या हमको लगता है अच्छा लगा तो पसीना भर पड़ा। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं ड्रामाबाज, लेकिन जनरली नैनों से आंखों से या मुख की मुद्राओं से पता चल जाता है कि खुश है कि ना खुश। तो भगवान खुश है, भगवान तो हमेशा खुशी रहते हैं, तो गीता में बेचारे माइक लेकर बोल रहे कि आइए मेरी शरण में आइए, सब कुछ छोड़कर आइए, कोई नहीं आता, ये कुछ पत्नी आए आई है, बाकी तो सब सुनते हैं सुनकर फिर घर जाते हैं, गीता सुनते मेरी शरण में आइए फिर भागते शरण से दूर। तो भगवान कहते कि असलियत में आप लोगों ने वेद सही सुना कि सब कुछ छोड़कर आई, और लोग यहाँ आते मुझे छोड़कर दूर जाने के लिए, तो बहुत खुश है कृष्ण। और कल जैसा वर्णन हुआ था कि भगवान के इस रूप सुधा को नैना नैनामृत से नैन के कटोरे से पी रही है, इसलिए भगवान के दर्शन को भी लोलुपतावत देखने को पीना कहा गया है शास्त्र, और अति आसक्ति वक्त पूर्ण अनुराग से सुनने को भी पीना कहा गया है। पीबो तो भागवत रसमाले, भागवत की कथा को व्यास जी ने सुनने को नहीं कहा, पीने को है, कथा कैसे पी जाएगा, थोड़ी जूस है, बोले नहीं ये भी जूस का बाप है और इसको कान से पीना है, मतलब अत्यंत आसक्ति पूर्वक अनुराग पूर्वक सुनना ये पीना माना जाता है। तो पी रही है कृष्ण रूप सुधा को ये सब पत्नियां, तो आगे चलते हैं इस तरह। प्राय श्रुत प्रियतमोदय पूर्ण के यस्मिन् निमग्न मनस तमगाक्षिरंध्रे प्राय श्रुत प्रियतमोदय कर्ण पूरे। सुखदेव जी कहते हैं कि प्राय आज तक ये यज्ञ पत्निया, ये ब्राह्मणों की पत्निया क्या की थी, प्रियतम ये जो अपने प्राणनाथ है श्री कृष्ण उनके यश को कानों का आभूषण बनाई थी। कर्ण पूरे मतलब कान के कुंडल या बाली या जो भी कान के आभूषण, इन इन पत्नियों के कानों का आभूषण क्या था, कृष्ण का था, कृष्ण का यश। तो प्राय श्रुत, श्रुत मतलब कान, कानों में प्रियतमोदय प्रियतम के जो ये यश है कर्ण पूरे उसी को उसका आभूषण बनाई थी। मतलब कृष्ण यश को बहुत सुनी थी और आज देखी, आज सामने देख रही है उसी को। तो क्या किया, उसका पूर्ण मन बना हुआ है उससे मिलन की आशा में, अखबार में भरने के लिए, लेकिन बलराम जी खड़े हैं, सखा खड़े हैं और भगवान कृष्ण गोप है, खुद ब्राह्मणी है, तो संकोच भी हो रहा है। तब क्या किया जाए, यस्मिन निमग्न मनसो, मन पूर्ण रूप से कृष्ण में परिपूर्ण आवेशित हो चुका है इन लोगों का, सुनकर ही हो चुका था, देखा तब तो अब कहना ही क्या। तो अक्षी रंध्रे आंख में, ये अक्षी को आंख कहते हैं और रंध्रे मतलब आंखों के द्वार से, आंखों के रास्ते से, आंखों की जो पुतलियां होती है काल जिससे दृश्य रूप दिखता है, अंत प्रवेश भगवान कृष्ण के उस रूप को जो आंखों से देख रही है आंखों के रास्ते से हृदय में उतार दिया। अक्षी रंध्रे अंत प्रवेश हृदय में उतार दिया। देखो ये दर्शन की कला सिखाई जा रही है, हम लोग भी बांके बिहारी को मंगला में देखते हैं या सिंगार में देखते हैं, इस तरह देखना चाहिए। इतना आसक्त अनुराग पूर्वक जो कहना है, जो रूप है, उसको आंखों के रास्ते हृदय में उतार, फिर आप बाहर भी देख सकते हो जो देखा है, अगर सही रूप में देखा है तो पूरा दिन दर्शन कर सकते हो, नहीं तो आंखें केवल वहां है और मन आजू बाजू कौन क्या कर रहा है, चप्पल किधर है, कौन आया कौन गया, तो फिर वही चिंतन। दर्शन की एक अपनी कला है, भगवान कृष्ण ने फ्री में हम सबको कैमरा दिया है, कोई बैठे ये मन एक ऐसा है जिसमें आप रील है चल रहा है, जो भी फोटो खींचो फ्री में, किसी को पता भी नहीं चलता फोटो खींच लिया, उसमें तो लाइट भी होता है, इसमें सेल भी जाता है, लेकिन हमारे पास भगवान ने ऐसा दिया है किसी का भी खींच लो अंदर, लेकिन हम लोग क्या है दूसरा कचरा पट्टी दूसरा फोटो से जीबी जाम करके रखे, पहले उसको खाली करिए, श्याम सुंदर को भरना है तो जो दूसरा दूसरा सब पिक्चर लगा के बैठे है कचरा पट्टी उस रील को कैंसिल करना पड़ेगा ना। तो ये बड़ा सुंदर आंख की रूपी कैमरे लेंस से आप फोटो खींच के हृदय में रख सकते हैं और फिर कभी भी उसका स्मरण दर्शन उस सुख में बैठ सकते, कोई अंतर नहीं, इतना ही आनंद मिलता है कि कृष्ण चिन्मय, उनका नाम रूप गुण उनकी लीला चेष्टा सब उसी रस में काम करती। तो ऐसा रासलीला के समय भी गोपियों ने ऐसा किया था, स्थिति से जय में भी ऐसा वर्णन। और सुचिरम परिरभ्य तापम, बहुत काल से कृष्ण विरह का जो ताप था कृष्ण आदर्शन का, क्योंकि एक प्रिया के लिए प्रियतम का आदर्शन एक एक आग के समान है, जी को जलाता है हृदय को, तो इसको कल हमने जैसे कहा था विरह अग्नि कहते, विरह की आग व्याकुल, जैसे राधा रानी के विषय में विश्वनाथ जी ठाकुर ने लिखा है कि जावट में जब जटिला उसको नहीं भेजती थी श्याम सुंदर के दर्शन के लिए, रोक लेती थी, तो ललिता विशाखा तो जानती है कि प्रिया जी जब मिलेगी नहीं तो शरीर प्रेम इतना उफान लेगा कि शरीर अस्त-व्यस्त हो जाएगा, तो राधा रानी का शरीर एकदम गर्म हो जाता था। तो ये लोग बड़े बड़े सुंदर शीतल कमल और गुलाब की पंखड़ियों की शैया बना दी थी और चामरादि से सहवालन कर दी थी पंखा जन, लेकिन जैसे राधा रानी फूलों की शैया पर सोती थी तो सब जल जाता था वो, वो पूरा जो शैया था वो, क्योंकि शरीर विरह में इतना ये हो जाता था प्रिया जी का, और कहीं मिलन का संदेश आ जाए, घनिष्ठा आकर कहती थी कि क्यों आज बनाने नहीं आई प्रसाद नंद भवन में, तो नंद रानी ने भेजा है कृष्ण के लिए प्रसाद बनाने के, तो ललिता विशाखा से मैसेज मिलता था कि श्याम सुंदर के लिए प्रसाद लेने आई है, क्योंकि हर रोज जाती थी ये वहाँ बनाने, लेकिन कभी कभी सास ननंद का दिमाग चढ़ जाता था तो नहीं भेजती थी, तब ये वहाँ से आते थे लेने के लिए। तो वो जो धुआं होता चूल्हा होता है ना गांव में, तो चूल्हा होता था, वो धुआं कर फिर वो आग जलाना पड़ता था, और उसमें भी ऋतु गर्म गर्मी, लेकिन उस धुआं और उस गर्मी और उस आग में भी राधा रानी के मन में है कि मैं मेरे प्रियतम के लिए बना रही हूँ, वो जो भाव था उसके कारण उसका शरीर बर्फ से भी ठंडा होता था उस ग्रीष्म और उस आग चूल्हे के पास, क्योंकि मिलन की आशा थी और विरह में उल्टा। बिल्कुल मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये असली प्रेम में ऐसा होता है, ये संसार में सब नाटक है, कभी नहीं होता है, होता तो भी वो सब लस्त है, कुछ बेकार की बात है, इनसे कभी मिलान नहीं हो सकता। ये सूर्य की समान है, ये प्योर गोल्ड है, ये सब आयरन है, यहाँ का कचरा सब केवल शारीरिक वासनाएं है और कुछ नहीं। लेकिन बड़े ऊंचे मन से सुनना चाहिए इस प्रसंग को, वर्षों से सुनी थी कृष्ण को विशाल, मिलना चाहती थी, अब पिया मिलन की रुद है, अब तो ये अवसर मिल गया है सखाव के द्वारा, तो इतना आनंद था, और अब फिर भी मर्यादा थी, लोक धर्म संकोचवश कर नहीं पाती थी, तब क्या करें। लेकिन कृष्ण को आंखों के रास्ते से हृदय में उतारा, और अब मनोमन तो कुछ भी किया जाए कृष्ण के साथ, तो कृष्ण जानते हैं या सखी जानती पत्नियां जानती, तो कृष्ण को अंत में लेकर, अंतकरण में हृदय में लेकर उसको खूब आलिंगन अखबार में भर ली मनोमन। ऐसे तो बाहर तो खड़ी है चित्र पर श्याम सुंदर अपनी जगह खड़े हैं बलराम के साथ सखाओ के साथ, लेकिन ये हृदय में जो ताप था उसको इस तरह बुझाई। तो उदाहरण देते सुखदेव जी है नरेंद्र, नरेंद्र कहकर बुलाते हैं इनको परीक्षित को कि तुम राजा हो और तुम इस बात को समझोगे इस प्रसंग को। प्राज्ञ यथाभिमतयो, जैसे बुद्धिमान लोग योगी लोग मन में परमात्मा का प्रेमांजन छोरित भक्ति, जैसे ब्रह्म संहिता में कि संत सदैव हृदयेषु, हृदय में भगवान को प्रकट करते स्मरण करते, जैसे ध्रुव भगवान उसके हृदय में प्रकट हो गए, तो इतना सुख मिल रहा था कि विष्णु सामने खड़े तो भी आँख खोलने का टाइम नहीं है उसे, क्योंकि कोई अंतर नहीं होता था परमात्मा रूप में, जब भगवान प्रकट होते हैं तो चिन्मय है ना वो भी। तो उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे उस योगी को भगवान प्रकट होता है या प्राज्ञ व्यक्ति के साथ जब भगवान प्रकट होते हैं, तो इसी तरह ये हृदय में भगवान कृष्ण को इस तरह आलिंगन कर रही है, भगवान खूब समझ रहे हैं इन लोगों के भाव को, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, सब समझ जाते हैं। तब भगवान बोलना चालू किए, सुखदेव जी कहते हैं कि तांस्तथां त्यक्त सर्वाशा प्राप्ता आत्मदिदीक्षया विज्ञाया अखिल दिग्दृष्टा प्राह प्रसितानम आननम मुखम प्रसिता, हंसते हुए मुख कमल से प्राह कृष्ण बोले, कौन कृष्ण बोले, विज्ञाय अखिल दृग्दृष्टा, कृष्ण के विषय में सुखदेव जी विशेषण दे रहे हैं कि अखिल दृग्दृष्टा, अखिल शब्द का अर्थ होता है अधूरा अपूर्ण, अखिल का अर्थ होता है पूरा पूर्ण, दृग माने आंखें, दृष्टा माने देखने वाला, पूरे विश्व में संपूर्ण जिसकी दृष्टि है, मतलब अंतर बाहर अवस्थितम, कुंती कहती है ना, कुंती अपनी स्तुति में कृष्ण से कहती है माया जवनिका छन्नम अज्ञम अधोक्षजम अव्ययम अलक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। आप मूढ़ व्यक्तियों को नहीं दिखते, लेकिन जो योगी है भक्त है वो तो आपको सब जगह दिखते, नमस्य पुरुषम ताद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानम, आप सभी जीवों से अलक्ष्य है लेकिन अंतर बहिर अवस्थितम, लेकिन सब जगह तो आप है। यह तो बाम गाते ना हृदय बाहिर नरसिंह, सब जगह है देखने वाले देख। तो सर्वज्ञ जिसकी दृष्टि है, सब कुछ जिसे पता है, विज्ञा है मतलब जानने वाले, वे भगवान इन इनके हृदय में क्या चल रहा है, बाहर से तो देख ही रहे, बाहर से तो सब जानते हैं, अंदर से भी जानते हैं कि क्या सोच रही है, कि क्या मनोरथ लेकर आई है। तो अखिल दृग दृष्टा सब कुछ जानने वाले श्री कृष्ण हंसते हुए मुख कमल से प्रेम से बोले, शिव देवी कहे क्या बोले, तांस तथाम त्यक्त सर्वाशा, क्योंकि भगवान ने देखा ये सब कुछ छोड़कर आई है मुझे प्राप्त करने है, मुझे मेरा दर्शन करना है, इसके अलावा सारी आशाओं को सारी इच्छाओं को तिलांजलि देकर ये आई है मेरे पास, तो मुझे इनका स्वागत करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने बोला स्वागतम वो महाभागास्यम किम करवाम ते, बस यही उधर भी बोला था राज पंचायत में स्वागतम। अब विप्रपत्ति तो कहना नहीं है क्योंकि छोड़कर आई है और ना तो इनको भी अच्छा लगेगा, तो कुछ संबोधन नहीं किया, बस ऐसे ही कहा आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान हंसते हुए मुख से कहेंगे ते स्वागतम अस्तु, आपका स्वागत है महाभागा, आप बड़ी भाग्यवान हो। मतलब भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी करके कुछ भी छोड़ के मेरी शरण में आता है या मेरा दर्शन करता है वही भाग्यशाली, बाकी सब भीख मंगे दरिद्र भले कुछ भी हो। मेरे दर्शन की इच्छा हो जाए या मेरे विषय में जो सुनता है या जो मेरा दर्शन कर लेता है वही इस विश्व ब्रह्मांड में सबसे भाग्यशाली। तो महाभागा, भागा स्त्रीलिंग में अकार लगता है, गम जैसे भाग्यवान होगा, महाभाग होगा पुरुष के लिए, लेकिन स्त्रियों के लिए महाभागा होगा। तो महाभाग्यवान हो आप सब, आपका हार्दिक स्वागत है। आस्यता बिराजिए, कहाँ बिराजिए, आसन तो था नहीं लेकिन एक स्टाइल है, भगवान कहते आइए बैठिए, अरे सीट कहाँ वो बेचारी बैठने वाली कहाँ जो तो देखने के लिए आई है, लेकिन भगवान कहते आइए बिराजिए बैठिए, किन करवामते मैं आपके लिए क्या करूँ। अब इतना सुनते हो तो इस तरह कहीं जाया जाए सब कुछ छोड़कर और इस तरह स्वागत मेरे तो खुश होगा ना, ये संतुष्ट हो जाए ऐसे कि ठीक है प्रिय तुमने स्वीकार किया हमको, एटलीस्ट कम से कम हमें बुलाया और पूछ भी रहे कि मैं आपके लिए क्या करूँ। लेकिन ये बड़े पक्के हैं, केवल पूछते हैं फिर वो क्या चाहती है बोलने का अवसर नहीं देते, खुद ही अपना सुना देते। उधर भी राज पंचायत यन्नो दृदीक्षया प्राप्तम उपपन्नम इदम हिव, मुझे देखने के लिए आप लोग सब कुछ छोड़कर आई, ये बिल्कुल सही किया, ऐसा ही होना चाहिए, सराहना की है जो काम, नहीं तो ऐसे डर था ना कि ये क्या धर्म तोड़कर आई, पति छोड़कर आई, लेकिन भगवान कहते ये सही किया तुम लोगों ने, ऐसा ही करना चाहिए, मतलब आश्वासन दिया कि ये यथार्थ आपने किया। ननुबद्धा ही मई कुर्वंती कुशला स्वार्थ दर्शन, जितने कुशल है शास्त्र को जानने वाले विद्वान है उन सब ने यही किया है, सब कुछ छोड़कर मुझे ही प्रेम किया, और तुम लोगों ने भी यही किया स्वार्थी न। देखिए भगवान कहते कि जो स्वार्थी होते हैं वो मुझे ही चाहते, सेल्फिश। देखिए स्वार्थी बहुत बुरा माना जाता है लोग में किसी को कह देना, लेकिन कोई स्वार्थी है नहीं यहाँ। स्व शब्द का होता है स्वयं, मैं स्व, और अर्थ माने हमारा लाभ, हमारे लिए धन संपत्ति, तो हमारे लिए असली धन क्या है, कृष्ण है, कृष्ण भक्ति है, और ये जो जानता है या करता है वो स्वार्थी है, बाकी सब पदार्थी है। लेकिन दुनिया में लोग क्या चाहते हैं कि धन इकट्ठा कोई करता है अपना सुख, तो उसको हम क्या कहते हैं, वास्तव में वो स्वार्थी नहीं है, स्वार्थी सब महामंत्र जपने वाले हैं, इसलिए आपको कोई स्वार्थी कहे तो बुरा मत मानिए, तो भैया हूँ स्वार्थी। क्योंकि हमारा अर्थ हमारा धन कृष्ण है, कृष्ण प्रेम कृष्ण नाम है, और उसको आप ले रहे हो या चाह रहे हो तो वास्तव में स्वार्थी। और ये भागवत में प्रहलाद ने कहा है नते स्वार्थ गति निविशि दुराशयाय बहिर्थ माने, इस संसार के माया द्वारा जिसकी मति भ्रष्ट कर दी गई है वे लोग अपना स्वार्थ नहीं जानते, क्यों, क्योंकि जीव का स्वार्थ विष्णु है, नते स्वार्थ गति ही विष्णु, पर दूर आशया बहिर्थ दुर्बुद्धि के कारण विष्णु के बाहर ये बहिरंगा माया में अपना स्वार्थ देख रहे हैं, इनकी मूर्खता। तो स्वार्थी ना, भगवान यहाँ कहते कि जितने स्व स्वार्थी, मतलब उस भाषा में नहीं है जैसे हम लोग यूज करते सेल्फी, स्वार्थ मतलब जो अपना आत्मा का हित, मुझ परमात्मा मुझ कृष्ण को जानते हैं, शास्त्रों से कुशल है, जिसकी बुद्धि मेधा सुमेधा है, वे लोग अहेतु की अप्रतिहता बिना कारण की, और अहेतु की मतलब बिना कोई रीजन बिना कोई कारण के, और अव्यवहिता मतलब नॉन स्टॉप अभिरत भक्ति आत्मप्रिय यथा मेरी ही भक्ति करते, शास्त्र को जानने वाले, अपने स्वार्थ को जानने वाले जो कुशल साधु विद्वान लोग हैं, वे सब मेरी अहेतु की और अविरत भक्ति करते हैं। और तुम लोगों ने भी यही किया तो तुम लोग भी भाग्यवान हो। और देखो, इस संसार में कोई किसी शरीर को चाहता है, वस्तु को चाहता है, पुत्र को, स्त्री को, पति को, कुछ किसी को भी चाहता है, अल्टीमेट में वो मुझे ही चाहता है, मेरे संपर्क से चाहता है। कोई अपने पुत्र को चाहता है तो उस पुत्र में मैं हूं इसलिए चाहता है, मैं और मेरा आत्मा निकल जाए तो शरीर को तो ये लोग जला देंगे। किसी भी वस्तु से कोई प्रेम करता है मेरे कनेक्शन से, मैं वहां से हट जाऊं तो वो लोग जड़ हो, वस्तु ही जड़ हो जाएगी, चाहने का प्रश्न ही कहां हो। तो भगवान कह रहे कि लोग जानते नहीं लेकिन सब मुझे ही चाहते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली, सही रूप में समझते नहीं, इसलिए मेरा संपर्क है, मेरा कनेक्शन जिस वस्तु से है उसी की चाह होगी, और यही व्यक्ति चाह करने लायक होता है। मान लीजिए मैं किसी को चाह रहा हूं, इसमें से परमात्मा आत्मा ने कहते ये खुद क्या चाहेगा, चाह भी इच्छा होती है मेरे कारण, और उधर से भी चाह की परिपूर्णता होती है मेरे कारण, सब कुछ मैं हूं। लेकिन आप लोगों ने यह बड़ा सही काम किया कि सीधा मुझे चाह। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, तद्यात देव यजनम, आप उस यज्ञ में वापस जाइए। अरे अब देखो, पूछा नहीं क्या, केवल बोल बोल ही कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते तुम्हारे मुझे पर तू बाहर लावा दे मारा उसी पूछे टाइम बात बोलो ना, बस यही स्टाइल अपना है, सब बखान करे स्वागत करे, ये कुछ भी स्त्री आप बोले उसके पहले कहते अच्छा किया अब आप वापस जाइए। तद्यातम, आप वापस जाइए, कहाँ जाए, देव यजनम, जहां उस देवता का यज्ञ हो, यजनम मतलब यज्ञ हो रहा है, और पतयो वो द्विजातय, उस ब्राह्मण जाति के द्वारा जिस पतियों को आप प्राप्त किए उस ब्राह्मण पतियों के पास जाइए। ये वो सब आपत्ति विपत्ति को छोड़कर असली पति के पास जाइए, और ये कह रहे कि आप पुनः उस विपत्ति में जाइए। पते वो दी जाते हैं, मान लिए पूछे कि क्यों जाए हम यहाँ, हम तो सब कुछ छोड़कर आइए, आप नहीं जानते, नहीं नहीं स्वसत्रम पारिष्यन्ति युष्मा भी गृह में दिना, वे सब गृहस्थ ब्राह्मण है, आप लोगों से पाणी ग्रहण किए हैं, भले गलती हो गई, किसी से भी हो जाती है, आपकी हो गई या उनकी हो गई, लेकिन हो तो गई तो अभी निभाना पड़ेगा। बिना आपके उसका यज्ञ पूरा नहीं होता, स्त्री यजमान जब गृहस्थ यज्ञ चालू करता है तो स्त्री को साथ में लेके करना पड़ता है, और उन्होंने आपके साथ में ही कर दिया था, उसको थोड़ी पता था बीच में से ये चल गई उठा के सब सामान, भोग भी लेकर चल दिया और खुद भी गई, प्रसाद भी गया, पत्नी भी गई, तो बेचारे रो रहे हैं, कैसे भी है मेरे धाम के है ना, मेरे है, भले वो मुझे नहीं चाहते लेकिन मैं कैसे बोलता, मथुरा के है ना, मथुरा मेरा धाम है। तो आपके पति रूप में आपको मिले हैं तो आपके बिना उन लोगों का यज्ञ पूरा नहीं होगा, और ऊपर से बेचारे भूखे हैं और रो रहे हैं, और कल का भी टिफिन कहाँ बनाएंगे पता नहीं, क्योंकि बर्नी चली गई, ढूंढ रहे होंगे किस लॉज में क्या किया जाए, तो बड़ी चिंता है मुझे भी और उन लोगों भी होगी, इसलिए आप कृपा करके जाइए। इस तरह निष्ठुर वचन सुनकर सब उदास हो गए, पहले खूब खुश थी, सब कुछ छोड़कर आई थी, और इस तरह अभी जहाँ केवल हाँ उसके झगड़ा करके उसकी सारी बातों का अनादर करके और किसी को तो गिरा भी दी थी वो झटका लगाने में, अब फिर उनके पास भेजना तो एक तरीके से बड़ा सबसे भारी दंड था, और ऊपर से भेजने का अर्थ आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, हम इतना सब कुछ छोड़ के आए और आप भेज रहे हो, मतलब वहां पहले हमको सुनना पड़े रहना पड़े, ये भारी दुख नहीं है, दुख ये है कि आपने स्वीकार, दुख तो ये है उधर कुछ मार खाना पड़े सुनना पड़े, इसकी टेंशन नहीं थी। तब पत्न्या उजुहु व्यास जी भी लिख रहे हैं, विप्र पत्नी नहीं लिख रहे, पत्नी ऊंचो किसकी पता नहीं जिसकी अब जिसकी अब पहले देखो लिखा गया यज्ञ पत्नी आब्रह्म, अब व्यास जी ने भी तो लिखा पत्नी आ बोली विप्र पत्नी, क्योंकि विप्र पत्नी तो मानती नहीं थी अपने को, उसके यहाँ तो जाना भी नहीं था, तो जिससे बात कर रही उसी की पत्नी आ बोली, कृष्ण की ही पत्नी आ बोली भाव से, मेवं विबोधति भवान् गदितो निशंस सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्। हे विभो, देखिए सब पत्नियां बोल रही है, बहुत सुनने लायक उद्गार है इस विप्र पत्नियों के, प्रेम से पगे पड़े हुए, इस तरह संसार को सब कुछ छोड़ देना और ऊपर से जिस प्रियतम के पास गए वो भी निकाल दे, वे स्त्री क्या करेगी, आप सोचिए उसकी अवस्था पर, विचार करने लायक है। और वे बोल रहे हे विभो, विभो शब्द का आप ऐश्वर्यपूर्वक शब्द है कृष्ण का, जो सर्वत्र व्याप्त हो और पूरा विश्व ब्रह्मांड जिनका ऐश्वर्य हो और उस सारे विश्व ब्रह्मांड ऐश्वर्य के एकमात्र अधिपति हो, उसे विभु कहते हैं। विभु मतलब महान, ग्रेट, बड़ा, सबसे हम लोग अणु है कहते ना, और ये विभु है। हे विभो, एवं भवान मतलब आप गदितम निशन से इतना क्रूर, इतना कठोर कैसे बोल सकते हो, सत्यम कुरुष्व निगमम, आप जो वेदों में बोले हो उसको सत्य करिए, निगम मतलब वेद पुराण, आगम निगम कहते हैं शास्त्रवाणी को, वेद को क्या कहा जाता है, निगम। तो आपने जो वेदों में बोला है उसको आप सत्य करिए, वेदों में क्या बोला है, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ बोला है, और हम कर गए। ये कहने वाले केवल प्रवचन सुनेंगे, कोई आएगा नहीं, संडे भी बाद भूल जाएगा प्रसाद के पाएंगे, हम लोग ऐसी नहीं है, हम सब छोड़ के आई है, और आप अभी आई है तो मना कर रहे हो, उल्टा नीति, जो नहीं आता है उसको भीख मांग रहे आओ आओ, और जो आई है उसको कहते जाओ जाओ, ये कौन सा स्टाइल है प्रचार का कैसे है, जो नहीं आ रहे उसको गीता में प्रवचन दे रहे हो, कई जगह पुराणों के श्लोकों में, वेदों के श्लोकों में सार तो यही निकलता है, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आने का, तो जो आपने लिखा है बोला है उसको सत्य तो करिए, कि हम आई है आपकी शरण में तो हमें रखिए, और सब कुछ छोड़कर आने को बोला तो वो कमिटमेंट पूरा किया हमने, हम सब कुछ छोड़कर आई, मोबाइल भी नहीं लाई इतना ब्याह कौन करता है आजकल, व्यक्ति पत्नी पति छोड़ सकती है, मोबाइल नहीं छोड़ सकती हम ये भी छोड़ दिया आपके लिए, बताओ इससे कुछ नहीं लाई है, लाई है बस थोड़ा बहुत प्रसाद अभी आपके लिए लाई है, पति तो खिलाए बिना आपको खिलाने आई है, और आप है कि बस सजाइए कह रहे हैं, तब पाद मूलम हम आपकी शरण में आई है, प्राप्ता वयम तुलसीदान, मान लीजिए भगवान कहे कि देखिए सही है आप बोल रही है कि मैंने वेदों में कहा है मेरी शरण में आना चाहिए, तुम आई हो उसके लिए मैं खुश भी हूँ, मैं मानता हूँ तुम लोग, लेकिन मैं तुम्हें रख नहीं सकता, क्यों, द्विज जाते हैं, जैसे भगवान ने जाते होगा कि आप द्विज जाति की पत्नी आओ उनका यज्ञ पूरा करिए, तो आप ब्राह्मणी हो और मैं गोप हूँ, तो हमारा कभी भी कुछ भी होगा, विवाह होगा या लफड़ा होगा, जो भी होगा गोपियों के साथ ही होगा, आप लोगों का कनेक्शन नहीं होगा ऐसा, और लोक वेद की मर्यादा का भी ख्याल रखना है, और आप शादीशुदा हो उसमें भी ब्राह्मणिया हो, तो दूसरा एक वेद फॉलो करने पर उसी वेद के नियम टूट जाएंगे, और दूसरी बात ऐसे में ऑलरेडी जितना बुरा और बदनाम ब्रज में हूँ, फिर कल न्यूज़पेपर में दूसरा छपेगा कि अब ब्राह्मणों को भी ले रहा है तो मेरा और बदनामी होगा, इसलिए आप कृपा करके लौट जाइए वापस, ब्राह्मणी हो और मर्यादा पालन करना है धर्म का, मैं गोप हूँ इसलिए आपको नहीं रख सकता। तब ये गोपियाँ कही कि अरे सर गोपियाँ क्या पत्नियाँ कही कि ठीक है आपको शर्म लगता है आपके लोक की पड़ी है, हमारा लोक धर्म सब गया, आपको अपने पिता की और आगुरु और लोक का पड़ा है, लेकिन हम आपकी दासियाँ हैं, आपको परेशान करने या आपको दुखी करने नहीं आई, हम नहीं चाहती कि आप हमको ले जाइए नंद भवन में या गोकुल में नंदगांव में, हम इसी जंगल में रहेगी, ढिलनी आदिवासी की स्त्रियां जैसे रह जाती है जीवन काट लेती है ऐसे,
हम भी काट लेंगे,
लेकिन वहां जाने का आदेश मत दीजिए, आप साथ में मत ले जाइए अपने, क्योंकि आपको अपने लोक की पड़ी है, धर्म की पड़ी है, तो छोड़िए आप जाइए, हम नहीं चाहते कि आपके साथ हम आए और सबको दिखाना चाहते। प्राप्ता वयम, देखिए कितना सरल विनम्रता का भाव है इन पद्मियों का। वास्तव में प्रेम की परिभाषा को भागवत सिखाता है, प्रेम में केवल प्रियतम की खुशी, उनका सुख, उनका आनंद और इनकी इच्छा की पूर्ति ही लक्ष्य होता है। स्व सुख वासना का बिल्कुल गंध नहीं होता प्रेम में। प्रेम में केवल त्याग होता है, केवल समर्पण होता है। इसको हम हमारे आचार्य से समझे, चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले लोकनाथ गोस्वामी को, जो लोकनाथ लोकेर जीवन हम गाते हैं पर गुरु वंदना में, नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु, उस समय वो नवद्वीप में रहते थे, चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में लीला करते, जब वो गंगाधर के यहाँ छोटे क्लासमेट विद्यार्थी के रूप में भी जब चैतन्य निमाय थे, तब से लोकनाथ तो उस समय बड़े थे उम्र में, युवान थे जब चैतन्य महाप्रभु बच्चा थे, तब तो उनकी रूप माधुरी को देखकर जान गए थे तत्व से कि ये साक्षात कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन संग आनंद के लिए ही वो नवद्वीप में रहते थे, कौन? लोकनाथ गोस्वामी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब बड़े होकर संन्यास लिया और अपना युग धर्म और असली जो अवतार कार्य चालू किया, तब तो उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी को बुलाया, उन्होंने कहा कि देखिए हमारी इच्छा है कि आप वृंदावन जाए, और व्रज में जो लुप्त हो चुका है राधा कृष्ण, हमारी जो लीला स्थलियां, उसको आप पुनः प्रकट करें, क्योंकि वृंदावन तो था लेकिन काल क्रम में कौन जानता था कि यहाँ काली दमन हुआ है, कौन जानता था कि यहाँ गिरिराज है, उसको ये जो लीला स्थलियां तो थी लेकिन अप्रकट था, लेकिन आप मंजरी हो, आप तो हमारे, क्योंकि स्वरूप से तो वो राधा कृष्ण के साथ मंजरी है, तो उनको पता है कि यहाँ ये हुआ है, तो हमारी इच्छा है अभी कि आप जाइए वृंदावन। तो ये चरणों में गिर कर रोने लगे कि कोई और दंड दीजिए, लेकिन आप हमसे अलग मत करिए, क्योंकि अब तो राधा कृष्ण है वही वृंदावन है, और वही राधा कृष्ण आप हो, आप जहाँ हो वही, इसलिए हमारे जीवन की सर्वस्व चार सार वस्तु यह है कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपकी सेवा करना, हम नहीं जाएंगे वृंदावन। तो महाप्रभु ने कहा कि देखिए आप हमारा संग चाहते हैं, हमारी खुशी चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं, इससे आप खुश हैं? बोले बोल तो रहा हूँ कि मैं आपके संग में आपके साथ में खुश रहूं। तब आप दूसरा प्रश्न महाप्रभु ने किया कि आप ये बताइए कि आप अपनी खुशी चाहते हैं या मेरी, अगर मेरी खुशी चाहते हैं तो आप मुझे छोड़कर वृंदावन दें, अब क्या करें? उनकी खुशी थी कि इसके साथ रहना चाहिए, कौन छोड़ेगा चैतन्य महाप्रभु के संग को, उस कीर्तन को, उस ज्ञान को, इसीलिए तो सब है। लेकिन महाप्रभु ने कहा कि आप मेरी खुशी है, मेरी इच्छा है कि आप जाइए, अब क्या करें? तो भक्ति प्रेम मतलब अपनी खुशी नहीं, अब चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि मैं ब्रज में जाऊं, तो बस गए। और सबसे पहले गौड़ीय पार्षदों में वृंदावन जाने वाले लोकनाथ गोस्वामी और भूषण गोस्वामी हमारे आचार्य, बाद में गए रूप सनातन, बाद में गए रघुनाथ दास, फिर नरोत्तम दास, ये परंपरा फिर चली। इसलिए आज भी आप ब्रज में, जब हम तो बहुत घूमते हैं ब्रज में, तो मिलते हैं अन्य संप्रदाय के साधुओं से भी, बहुत चर्चा होती है, लेकिन कोई भी संप्रदाय का हो ब्रज का, कोई भी मंदिर, वास्तव में विद्वान परंपरा में या कुछ असली साधुओं से जब बात होती है, तो चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन और लोकनाथ, इनको याद करके वो लोग रोने लगे, क्योंकि ये लोग नहीं होते तो आज ब्रज किसी को नहीं मिला होता, क्योंकि उसको ढूंढने वाले ये लोग हैं। फिर भले और संप्रदाय आ गए और परंपराएं आ गई और साधु आए, लेकिन ये वृंदावन है ये किसने खोजा? ये सब चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों ने खोजा, और उसमें भी राधा कुंड जैसे जाकर चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं खोजा, लेकिन ये नहीं होते तो ब्रज आज प्रकट नहीं होता, होता लेकिन कहाँ है पता नहीं। तो आज गौड़ीय आचार्यों को अन्य आचार्य भी, अन्य संप्रदाय वाले भी बड़े आदर से पूछते, क्योंकि वो जानते कि हम देने वाले ये परंपरा है, हमको ये ब्रज देने वाली ये परंपरा है, लेकिन इन परंपरा ने त्याग किया। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप जाइए वृंदावन, रघुनाथ दास को कहा पूरी में कि आप जाइए गोवर्धन,
नहीं तो कौन छोड़ना चाहेगा चैतन्य महाप्रभु पूरी में रहते, रघुनाथ क्यों छोड़, सब कुछ छोड़ के तो उनके पास आए और ये कह रहे कि आप जाओ।
मैं ये कहना चाहता हूं हम भक्ति करते हैं भक्तों, तो मतलब क्या है भक्ति का, हमारे वैष्णव गुरुजनों की आज्ञा का पालन, उनकी खुशी, उनकी प्रसन्नता। लेकिन जब हम अपने स्वार्थ में होते हैं, अपनी इच्छाओं के दीक्षा हम लेने के लिए ले रहे हैं, तो दास तो अभी अपनी इच्छाओं के ही है, कहने के लिए इसके दास उसके दास है, लेकिन असलियत में हम अपनी इच्छा के दास। आप प्रवचन में भी मार्किंग करिए, मैं अपना अनुभव करता हूँ, मैं बहुत कभी कभी पढ़ता हूँ, बहुत सुनता हूँ, आप लोग भी पढ़ते सुनते हैं बहुत कुछ, लेकिन कमजोरी क्या है हमारी जानते हैं, माइनस पॉइंट, हम बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन करने का निर्णय यही करते हैं जो हमारी बुद्धि कहती है। सुनने के लिए तो बहुत सुना, लेकिन जीवन में डिसीजन क्या लेंगे, जो हमारा मन हाँ बोलेगा, हमारी जबकि दीक्षा वही कैंसिल हो जाती। दीक्षा मतलब गुरु के आज्ञा का पालन, शास्त्र वहीं से बात होती, वहीं से तो चालू होता है ये सिस्टम, वहीं से चालू होता है कि अभी आत्मसमर्पण दीक्षा, क्योंकि अभी आप जो बोले हैं आपकी आज्ञा वो मुझे करना, मेरी इच्छा को मेरी बुद्धि को साइड में। अब इस अनुसार तो हम सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि हम तो हमारी इच्छा और हमारी खुशी हो तो सेवा ठीक है, तो साधना ठीक है, बाकी आउट। लेकिन आप इसको पढ़िए, देखिए रामायण में भी यही बात आई, भरत जी का प्रेम इतना था राम के प्रति कि सब कुछ अयोध्या के राज्य को छोड़कर वन में गए वापस लाने के लिए। भरत थे, दूसरा कोई होता तो 14 का 18 कैसे वो वीजा वो तय कर, बड़े भाई उधर ही जाए, आए ही नहीं कुछ भी हो, है ना। लेकिन भरत भरत थे। जब कहा गुरुदेव ने रामायण में वशिष्ठ ने कि मैं भी चाहता हूँ, तुम्हारे पिता की भी आज्ञा है, और मैं और पिता तो मैं जानते कि तुम्हारे लिए इतने, तुम्हारे लिए तो राम ही महत्वपूर्ण है, वो राम भी चाहते हैं कि तुम राज्य करो, इसलिए वन में गए, और वो खुश थे कि मेरा भाई भरत राजा बनेगा तो मेरे लिए उससे बड़ा कोई सुख नहीं। लेकिन भरत जी ने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप सपने में भी, अगर मेरे मन में कहीं कोने में भी है कि मैं राजा बनूं, ऐसा सपने में भी कोने में, तो अभी पृथ्वी रसातल चली जाएगी, मैं कभी नहीं चाहा ये, कैसे हो गया मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोग और इतनी कृपा करिए, छोड़िए सब बातें राज कौन करेगा, पहले मुझे मिलना है मेरे भाई से, तो आप लोग आज्ञा दे तो मैं उनको देखना चाहता, उनके दर्शन करना चाहता। तो सब लोग भरत का जय जय बोलने लगे, पूरी अयोध्या। तो वहां पर एक बड़ी सुंदर बात लिखी है गोस्वामी ने कि आज तक सबके हृदय में कौन रहते हैं, राम रहते हैं, और अयोध्या के राजा भी राम बने, यही तो सब चाहते थे, अयोध्या के राजा राम बने या ना बने, सबके हृदय में राम रहते या नहीं रहते जो भी है, लेकिन आज से सबके हृदय में भरत रह रहा। मतलब भरत ने अयोध्या का गादीपति तो नहीं लिया, लेकिन सबके हृदय का सिंहासन किसका है अभी, अपने गुणों से। कितना प्रेम था, पूरी दुनिया पिघल गई। और जब वहां मीटिंग हुआ चित्रकूट में, तो जनक, ये वशिष्ठ, विश्वामित्र, शतानंद जैसे सब हायर ज्ञान में बड़े पंडित, शास्त्र मेधावी, नीतिज्ञ सब बैठे थे, लेकिन भरत जब बोलते थे कुछ भी, तो ऐसा वर्णन है कि इन सब के ज्ञान के मंदरा जल भरत के प्रेम समुद्र में डूब जाते, चलता ही नहीं था इनका प्रश्न, अंत फिर डिसीजन राम पर छोड़ा गया। तो राम को भी फिर क्या करे, पिता रघुकुल रीति थी, नियम ही पालन करना था, उनकी इच्छा भी थी वन में रहो, लेकिन भरत का प्रेम ही इतना महान था कि राम ने कह दिया हम सब हार गए तुम्हारे सामने, भरत तुम जो बोलो वही करना, तुम चाहते हो कि मैं आकर राजा बनूं और तुम मेरी बदले तुम जो बोलो वही करना। अब तो पूरे अयोध्या वाले तो खुश हो गए कि अब डिसीजन भरत के पास, और सब एक मत से, क्योंकि सबका ज्ञान आउट, सब नीति सब जीरो हो गया प्रेम के आगे भरत के। अब लेकिन भरत भी भरत थे, उन्होंने फिर जब सब राम, लेकिन वो जानते थे कि राम ये चाह रहे कि मैं जो करूं, लेकिन जब अपने पर छोड़ा जाता है तो प्रेमी ये चाहता है कि मेरे प्रभु क्या चाहते, यही प्रेम का परस्पर संबंध है, एक दूसरे का सुख विधान, एक दूसरे की इच्छा पूरी करना। तब भरत ने सब सबके सामने उल्टी बात कह दी जो कभी सोची नहीं थी अयोध्या वाले। सब सोच रहे थे अब तो राम जी आएंगे राजा बनेंगे, क्योंकि भरत को डिसीजन दिया, भरत तो यही कहेगा क्योंकि यही कहने तो आए थे। लेकिन नहीं कहा भरत ने। भरत जी कहते हैं कि जो भी आप हे करुणा सागर आप जो चाहते हैं वही करें, और मुझे पता है कि आप मर्यादा निभाना चाहते हैं, धर्म पालन करें, इसलिए आप राजा बनना चाहते हैं, तो मुझे आप रहिए वन में, मुझे मैं राजा बनना ऐसी आपकी इच्छा है तो मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप चाहते हो तो मैं क्या करूँ। जय ही विधिनाथ प्रसन्न मन होई, हे नाथ जिस तरह आप प्रसन्न हो करुणा सागर कीजिए सुन, आप प्रसन्न हो करिए क्या किया। इस तरह का चैतन्य चरितामृत, इस तरह का रामायण, इस तरह यहाँ भागवत आज जनता के सामने ठीक से आ नहीं रहा। अगर ऐसा सुनेंगे ना निकल जाएगा कपट, ये सब जो हमारे अंदर भरा हुआ है तो ये पद प्रतिष्ठा सब कहीं हवा चली जाएगी ये प्रसंग सुनने पर। नहीं जाके फिर भी चले गए रोते रोते, और वहां जाकर भले सन्यासी जैसा ही रहे, लेकिन भक्ति मतलब भगवान खुश हो, भक्ति मतलब गुरु खुश हो, भक्ति मतलब हमसे सारे वैष्णव खुश हो। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि भक्ति मतलब मन मजा लू जो मैं खुश रहो, ये कहाँ लिखा गया हम खुश रहे ये भक्ति कहाँ लिखा गया। जबकि भक्ति भगवान और गुरु की खुशी में ही भक्ति खुश देती है, भक्ति का सृजन है। इसलिए है श्याम सुंदर आप नहीं चाहते ना हमारे हमको साथ रखना, हम कहाँ कह रहे कि आप उन्हें साथ रखें, हम कहाँ कह रहे कि आप दीजिए सबको, हम अप्रेमी है बताइए सबको, हमने इतना त्याग किया, कुछ नहीं चाहते हम, इसी जंगल में रह जाएंगे और कब भी आपको कंप्लेन हो ना तो आपसे मांगेगी कि हमको खाना दो, जैसे आजकल की आती है तो पूरा दिन उसी को देना है सब, ये कोई टेंशन नहीं हमारे हमारे मेंटेनेंस चार्ज आप पर नहीं है, और ना हम चाहते हैं कि आप सबको दिखाओ हमने छोड़ा त्याग किया, ना हम चाहते हैं कि आप रखो, बस इतनी कृपा करो कि आप जब वन में आते हो गोप सखाओं के साथ या गोपियों के साथ विहार करते हो, माला पहनते हो, रास खेलते हो, ये तो हम सुनी है व्रज में तो होता ही रहता है कि गोचारण और रास दोनों दिन में ये रात में ये काम तो वन का वन विहारी का यही है। तो उस माला से जो कुछ बिखर जाएंगे तुलसी के फूल या पत्ते और जिसमें आपकी और आपकी प्राण प्यारी गोपियों के चरण की रज लगी होगी, बस उनको हम सिर पर लगाएगी, उनको सूंघ लेगी, यही हमारा जीवन, बस आपके आपके गुणों को गाएगी, आपके नामों को सुनेगी और आपके जो चरण पाद से जो ये फूल माला या आपकी गोपियों का प्राण प्यारियों का जो प्रसाद है उसको धारण करके हम इन केन प्रकार में जीवन काट लेगी, कभी आप पर बोझ नहीं बनेगी, ना कंप्लेन करेगी, ना कुछ चार्ज किया। लेकिन समस्त बंधु आप कह रहे कि अपने पति के पास जाओ, अपने बंधु के पास जाओ, लेकिन हमारे पति या बंधु वो तो आप ही हो, वो सब तो हम कब की छोड़ कर आ चुके हैं, और ये तो आप भी जानते हैं हम सब छोड़ कर आ चुके हैं, तो फिर वहाँ वापस मत कहिए, साथ भी मत लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ वापस जाने को मत कहिए, नहीं तो आप कहेगी तो हमें जाना पड़ेगा आपकी खुशी के लिए, लेकिन हम आप इतना इतना कह दीजिए कि बस हम यहीं कहीं रह जाए वन में और ऐसे कैसे गुजारा कर ले पत्ता फूल खाकर, लेकिन आप तो नाम गाती रहे आपको सुनते रहे बस। गृहणंती न पतयो पितरो सुतोवा, और कहीं अब हम गई ना तो भी वो लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, जिस तरह हम आई है छोड़कर उस तरह वो लोग अभी हमें नहीं स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करेंगे तो मरने से भी बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि ताना मारेंगे, निंदा करेंगे, अपमान करेंगे सब, क्योंकि यही होगा, एक तो स्वीकार नहीं करेंगे और स्वीकार करने के लिए रखेंगे तो भी नहीं स्वीकार करके भी बुरा हार कर देंगे स्वीकार करने के बाद भी। तो तस्मात् भवत् प्रदयो पतितात्मनायो भवेत् गति अरिन्दमं विदेहि, हे शत्रुओं के विनाश करने वाले अरिन्दम इतनी कृपा करिए हम पर कि वहाँ जाने को मत कहिए, हम जैसे तैसे आपके पति थे, हम लोग आत्मा है, आप जो भी है आपकी दासियाँ हैं, यहीं कहीं हमको रहने दीजिए। और सब के आंखों में आंसू है, नजरें नीची है, अब तो उतना जो पहले जिस भाव में आई थी, जिस आशा, जिस अभिला, श्याम सुंदर के वचनों ने पूरा तोड़ दिया था उसको, लेकिन फिर भी श्याम सुंदर के प्रति कोई कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई दोष दृष्टि नहीं, कोई केस मुकदमा नहीं कि ऐसा किया तो आप ऐसा, कोई नहीं, पहले कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन फिर तुरंत दैन्य आ गए,
पहली लाइन में बोल दिया कि आप कठोर क्यों बोल रहे हो, जैसे आपने व्याख्या सुना, और फिर आप वेदों में बोले उसको पालन करिए, ये पहले बोला, लेकिन फिर स्वरूप में आ गई सभा में कि नहीं नहीं छोड़िए उसको, जो भी है हम तुलसी पत्ता खाकर या माथे पर उस आपके प्रसाद को चढ़ाकर जी लेगी, लेकिन वहाँ मत भेजिए। और वो लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमको डर है क्योंकि हम इसको छोड़ कर आई है इसलिए। तब श्री भगवान हुआ, तब भगवान बोलते, देखिए कितना सुंदर है, पतयो नाभ्य सुये रन पितृ भातृ सुतादय। देखिए पत्नियों, आपके पति आपसे ईर्ष्या नहीं करेंगे, मैं बोल रहा हूँ, और आपके भाई बंधु, क्योंकि भाई भी उसको भी उसका भी नहीं सुनी थी ना ये, किसी को सबको निकलट कर गए, बोले आपके पति आपके बंधु, बंधु शब्द से आपके सास ससुर जो भी है, जो भी रिलेटिव आपके, कोई आपसे ईर्ष्या नहीं करेगा, कोई आपकी निंदा नहीं करेगा, सब लोग आपको प्रणाम करेंगे और पूजेंगे। क्यों? लोकाश्च मये पेतां देवा भी मन्यते, जो मेरी शरण में आता है उसको देवता भी प्रणाम करते हैं, तो तुम्हारे पति क्या चीज है? ये ब्राह्मण क्या, जो मेरी शरण में आता है, मेरे पास आता है, उसको देवता लोग भी आदर देते हैं, प्रणाम करते हैं और पूजते हैं, तो फिर ये मनुष्य की क्या कहना। इसलिए तुम वो चिंता मत करो कि मुझे रखेंगे नहीं, या मुझे निंदा करेंगे, या मुझे डांट भर्सना, कुछ नहीं करेंगे, वे लोग तुम्हें प्रणाम पूजा और बड़े आदर से देखेंगे, क्योंकि जो मुझे प्रेम करता है, मेरी शरण में आता है, वो तीनों लोगों के लिए वंदनीय बन जाता है, पूज्य बन जाता है। न प्रीति अनुरागायम यद संगो निनामी है तन्मनोमयी ज्ञानम चिराम उपास्यतः। इसलिए आप बिल्कुल मन में संकोच मत रखिए। और रही बात मुझे पाने की, आप लोग मुझे पा ही चुकी हो और पाओगी भी, और वहां रहकर भी मेरा श्रवण कीर्तन करो, मेरे मिलन से भी ज्यादा सुख होगा। कहने वाले यही करते हैं, मिलना नहीं चाहते, राम 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 करके समझते भाई यही भक्ति, ऐसे ही करो तुम भी, इतना ओवर मत बनो। कभी कभी संडे क्लास में जाओ, थोड़ा सेवा जन्माष्टमी में कर दो, नेक्स्ट जन्माष्टमी में फिर नाम लिखा दो, इतना ही करने का, ज्यादा नहीं करना। भगवान ये स्वीकार है कि श्रृणवंतिक जहां भी रहकर मेरे नाम का कीर्तन किया जाए, कथा सुनी जाए, मेरे मिलन जितना ही सुख होता है, कोई अंतर नहीं होता। और इस तरह करने पर तुम भी मुझे पाओगी, मेरी पत्नियां बनोगी, मेरी प्रिया बनोगी भविष्य तक बाद में। इसलिए जो मेरा श्रवण कीर्तन करता है वो मुझे अल्टीमेट पाकर ही रहता है, लेकिन इस समय में सीधा नहीं कर सकता, इसलिए आप जाइए। अब क्या करें, भगवान ही नहीं तो ऐसे नहीं तो ऐसे, बस रिजल्ट फाइनल था कि आपको जाना है, वो टेंशन दूर कर दिया, स्वीकार नहीं करेंगे वो वाला भी, और भगवान ने ये भी बताया वो लोग तुमको प्रणाम करेंगे, पूजेंगे, तुमको आदर से देखेंगे, और यही हुआ वास्तव में। जो भी हो, हमको कभी कभी अनुभव होता है, आप सबको होता होगा कि भक्ति में आते हैं तो बंधु बांधव कुछ ना कुछ थोड़ा इधर उधर होता है ना, लेकिन अगर आपका भजन सही है तो अंततः तो वही लोग पूजेंगे। भक्ति का ही अपना पवित्र कर देता है अपने को भी और दूसरे को भी, भक्ति ऐसी वस्तु है, ध्रुव महाराज के प्रसंग में यही दिखाया गया, उसकी माँ सुरुचि, सुरुचि उसकी सौतेली माता थी ना, और उसी से द्वेष करके उसी को ये की थी ना, तो ना तो यही मारी थी, लेकिन भगवान को मिलकर जब ध्रुव आए तो यही सुरुचि सबसे पहले थाली लेकर गई और उसके आंखों से अश्रु बह गए, और हृदय नाटक में रियलिटी में, क्योंकि भगवान, जो भगवान की भक्ति कर लेता है उसके शत्रु भी उसके मित्र बन जाते। कृष्ण भक्ति का ये अपना प्रधान है, तो तुम मेरी भक्ता हो इसलिए वो चिंता मत करो, लेकिन हाँ धैर्य रखना चाहिए, सहन करके थोड़ा समय होगा, भक्ति शुद्ध करना पड़ेगा, तब रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है, भले शुरुआत में ऐसा लगता है लेकिन पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि भक्ति कभी अपना या दूसरे का बुरा करती है, शुभदा भक्ति के लग, भक्ति सर्व सिंधु में लक्षण है शुभदा, जो सबके लिए शुभदायक हो उसे शुभदा है। भक्ति के अलावा संसार में ऐसी कोई क्रिया नहीं जो शुभदा हो, एक के लिए शुभदा है दूसरे के लिए अशुभदा है, रोगी होना डॉक्टर के लिए शुभदा है तो उसके लिए तो अशुभदा है ना बेचारे के लिए, हार है तो जीत है, नुकसान है तो नफा है, तब ये ड्वेल संसार गुण दोष में है, लेकिन भक्ति एक ऐसी वस्तु है जो सबके लिए शुभ है, लेकिन भक्ति होनी चाहिए, नाटक से शुभदा नहीं होगा, ड्रामा, रियल भक्ति होगी तो पॉजिटिव रिजल्ट होगा। तो सुखदेव गोस्वामी इस तरह भगवान और गोपी इस यज्ञ पत्नियों का संवाद समाप्त करते हुए कह रहे हैं, इति उक्त्वा द्विजः पत्न्या यज्ञवाट पुनर्गता, यज्ञवाट यज्ञशाला में इस तरह द्विज पत्न्या, अब द्विज पत्नियां हो गई फिर से बीच में पत्नियां हो गई थी, अब आगे फिर द्विज लग गया, पुनर्गता पुनः वापस यज्ञशाला में गई। तिस्सान सुयस्वादी स्त्री भी संपारयन, और उधर तो वो लोग उसकी आशा में बैठे थे, ऐसा नहीं कि वो लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे कि अब आएंगे तो रखेंगे नहीं हमारे, भगवान ने जैसा बोला था ऐसा ही रिजल्ट हुआ। वे सब तो इंतजार कर रहे थे, अरे कोई समझाए कोई मिल जाए और वापस भेज दे, और आ जाए तो मना रहे थे अपने, वो खुश थे वो सब। और सुखदेव जी आगे लिखते हैं कि जैसे ही वो आई, और भी बहुत सारी बातें हैं, एक 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 यहाँ पर लिखा गया है कि एक पत्नी थोड़ी कमजोर थी, जब पत्नियां सब जा रही थी तो एक कमजोर थी, मतलब थोड़ा प्रसाद नहीं लेगी उपवास भी होगी एकाद से, तो उसका पति मजबूत था तो उसको पकड़ के रखा था, सब चली गई ये हाथ में आ गई, नहीं जा पाई, लेकिन जाने की उत्कंठा इतनी थी कि शरीर वहीं छोड़ गया, भाव देह से चली गई। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो, उस समय बोलना चाहिए था जब कथा कह रहे, जब जा रही थी देख रही थी त्यारे केवल नगर वाहन चल रहे मधुपति जो पांच आ रहे थे, तो बोले जो शरीर छोड़ दिया उसको उस बात में क्या कहना, वापस आ गए ये तब जुमले जी कर ये बात बता रहे, एक भी गई जैसे सब मन में आलिंगन कर रहे थे, तो वो भी पहुंच ही गई थी लेकिन मनोदेह से भावदेह से, और ये स्थूल शरीर तो उसका, तो फिर उसके पति का क्या हुआ, दूसरी शादी किया वो सब नहीं लिखा है, लेकिन बाकी सबका हो गया। तो फिर ये सब ब्राह्मण का उद्गार दिया गया है, वो क्या कहते हैं कि दृष्टम श्रीनाम भगवती कृष्ण भक्ति अलौकिक, जब उस स्त्रियों को देखा जब वापस आई इन ब्राह्मणों ने, तो ये सब ब्राह्मण प्रेमी बन चुके थे कृष्ण के। एक प्रश्न होता है कैसे एक दो घंटे ये मिलकर आई वापस आई, उतने में ये साधु कैसे बन गए सर। तो सुखदेव जी कहते हैं कि उसके पत्नी की भक्ति के प्रभाव से, पत्नी की कृष्ण में शुद्ध भक्ति थी और उसके लौकिक संबंध से भी कृष्ण ने इसको भक्ति रूपी रत्न दिया। और दूसरा फायदा ये हुआ कि ये पत्नी अब भोजन लेकर गई, जैसे पत्नी आ गई तो सखा लोग भी सोच रहे थे कि बेमाना बात पूरी करे तो मैं खाए कहीं, क्योंकि ये लोग तो उनको तो भूखे तो वही थे, भोजन तो वही रह गया ना, जब बातें हो रही है आने जाने की स्वागत की, लेकिन पत्नी आ गई तो फिर कृष्ण बलराम और सब सखाओं ने भोजन किया, जो पत्नी आ फिर गई तो सब वापस ले जाने की ऐसे ही गई थी, भोजन तो यही था, तो सखाओं ने की सब भोजन किया। तो सुखदेव जी लिखते हैं कि जो भी भोजन कृष्ण करे या कृष्ण के भक्त करे, उस प्रसाद खिलाने का जो पुण्य था वो इस ब्राह्मण को मिला, क्योंकि कमाणी तो आने दे रही थी ना, काफी मदावड़ा हुआ था, रातोवाड़ा भले आओ पर सहा ना करता था, तो इनका धन था ना, इनका अन्न था, और ये भगवान के भक्तों ने खाया, भगवान ने खाया तो उसी से उसको भक्ति भक्ति रत्न मिल गया, इन ब्राह्मणों की चेतना शुद्ध हो गई, कृष्ण प्रेम के पात्र बन गए। तो दो कारण, एक तो कृष्ण प्रेमी पत्नियों की संबंध लौकिक, और दूसरा उनके सेवा हो गई भगवान की और भक्तों की उनके धन से अन्न की, और उसके कारण इनका हृदय शुद्ध हो गया, इन ब्राह्मणों का भी तुरंत हो गया, बिना सोला माला किए बिना कुछ किए बोलो तुरंत एकदम इमीडिएट रिजल्ट हो गया इनका तुरंत, और फिर चेतना शुद्ध हो गई। अब क्या बोल रहे हैं, उस समय बिल्कुल कुछ नहीं बोले थे जब वो सखा आए थे, अब ये लोग कह रहे कि हाय रे अखिल ब्रह्मांड के अधिपति और उस कृष्ण के सखा हमारे पास आए, भीख मांग रहे थे और हम मूर्ख लोग अभिमानी उसके सामने देखे भी नहीं, दिया भी नहीं, वो नहीं मांग रहे थे, भगवान मांग रहे थे साक्षात, उनके उनके द्वारा तो कृष्ण ही मांग रहे थे, और जिस कृष्ण जो यज्ञ पुरुष है जिसको हम यहाँ आग में स्वाहा स्वाहा उन्हीं को तो खिला रहे कि उस यज्ञ पुरुष के लिए यज्ञ हो रहा था ना, तो इस यज्ञ पुरुष इस यज्ञ में हम आहुतियां दे रहे हैं और वे यज्ञ पुरुष साक्षात आए हैं हमारे सामने और मांग रहे हैं, लेकिन हम लोग अहंकारी ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर पंडिताई के भाव में उसी भगवान और उसके सखा का सम्मान नहीं कर पाए।
लेकिन फिर भी हमारी लाज है पत्नी आप लोगों ने रखी है कि आप चले गए, आपने दिलाया तो उसके नाते हम कुछ मुंह दिखा सकते हैं। कई एक आमियाना पति हो कुछ कुछ नाम दिखाने मुंह दिखाने लायक बन गए, ये तो सारी दुनिया हमारी कथा सुनती तो हमको तो धिकारती ना। लेकिन एक बार हमारा गुण होता कि इनके पति है भाई, तो आप लोगों ने हमें चाहिए कि आपके पति बनकर आपका नाम रो, लेकिन आप लोगों ने हमारा नाम रोशन कर दिया, यश बढ़ा दिया और कृष्ण की सेवा कर दी और आपकी कर दी हमारी मानी। भगवान ने तो यही माना कि हमने क्या, जबकि हमने कुछ नहीं किया, हमने तो उल्टा उसको अपमान अनादर किया, लेकिन आप भाग्यवान हो कि कृष्ण की और उसके भक्तों की सेवा कर दी और उससे भाग्यवान हम है कि हमें आप जैसी पत्नियां मिली। हमने तो मन था तुम्हारा पग धर बाणी भी है पर लेकिन इतना पिघल इतने शुद्ध हो गए थे लोग कि बहुत धन्यवाद दे रहे थे ये सब पत्नियों को। आज तो ये सब क्लास पतियों के लिए है आज का क्लास पतियों के लिए है, अभी दो दिन पतियों का था देखो ये पतियों को इस तरह होना चाहिए जो भाग्यवान हो गए कि हमको कृष्ण के भक्ता स्त्री पत्नी रूप में मिली और भक्तों की भगवान की सेवा करके आप लोगों ने हमारा जीवन मंगलमय और यश के पात्र बना दिया। और नहीं तो हम तो अभिमान में थे कि ब्राह्मण कुल में दिग ब्राह्मणम कुलम, दिग विद्या, दिग पांडित्यम, दिग ये सब बेकार है, पंडिता है, ब्राह्मण, वेद, यज्ञ, अगर कृष्ण में भक्ति नहीं, प्रेम नहीं तो क्या फायदा इंसान को। अगर कितना भी सुंदर ये शरीर हो, उसमें कुछ भी अलंकार पहना हो, इसमें आत्मा न हो तो क्या फायदा इनका बता। ऐसे ही कुछ भी हो, कृष्ण नहीं है तो डेड बॉडी लाश कुछ फायदा नहीं। तो हमारा ये जन्म, हमारा ये विद्या, ये हमारा यज्ञ सब बेकार। लेकिन एक काम की बात होगी कि आप लोग हमारी पत्नी है, एक ही जीवन में अच्छा काम हुआ कि शादी अच्छे आदमी से हुई, अच्छे व्यक्ति से हुई जिसके कारण आज हम कृष्ण के प्रेम तक पहुंच गए। तो उत्तम श्लोक है योगेश्वर है कृष्ण, कृष्ण योगेश्वर के चरणों में आपकी दृढ़ भक्ति है और आपके साथ हमारा संबंध होने के कारण भगवान ने हमें भी अपनाया और हमें भी इस तरह का ज्ञान भक्ति दिया। तो हम मूर्ख थे कि समझ नहीं पाए, लेकिन आप लोगों ने हमारी लाज रख ली तो हम आप और सब हमारे लिए आदर और पूज्य के पास पूजा के पात्र हो। और दूसरा तो यहाँ लिखा नहीं गया, लेकिन एक आचार्य समझाते थे कथा में कि एक तरह से भगवान का भला मान रहे कि अच्छा हुआ भेज दिया, नहीं तो इस बुढ़ापे में दूसरी कहाँ ढूंढते, एक मिली थी ये भी अगर कृष्ण ने रख लिया होता तब तो अरे कृष्ण मंदिर ही ज्वाइन करना था तो शायद इसलिए भी भगवान का भला मान रहे कि चलो वापस भेज दिया, नहीं तो हमारे रोके तो रुकी नहीं थी। तो इसमें ये नहीं है, ये तो विनोद में कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं बोले बेचारे, लेकिन मन में ये भी आता है कि भगवान हारा गया है घर वाला तो अच्छा नहीं किया, नहीं तो क्या आता है टिफिन गोदे जाने। तो ये इसलिए भी शायद वो भगवान का भला मान रहे कि भेज दिया। नमस्तुभ्यं भगवते, और वहीं से प्रार्थना करते कि अब तो कृष्ण तो वहां वन में है, भोजन करके वो अपने घर की ओर चले गए और ये सब ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नियों के बीच में सारे ब्राह्मण वहीं से उस दिशा की ओर देखकर हाथ जोड़कर नमस्तुभ्यं प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, हे योगेश्वर, आपकी माया से मोहित होकर हम लोग मति भ्रष्ट थे तो हमारी इस अनादर को आप माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, प्रार्थना कर रहे हैं। मानो सुखदेव जी परीक्षित पूछे कि वहीं से प्रार्थना कर रहे, अभी बुद्धि शुद्ध हो गया तो मंदिर जाओ बंद हो सब नजीक तो वही से अब गिल्टी फील कर रहा है, सुधर गए तो बेईमान नारे में चला कपल पहले अकेले गई थी अब चलो मैं भी साथ आऊं क्लास गए क्यों नहीं ये ब्राह्मण। तो उसका अंतिम बात लिख रहा है सुखदेव जी कि कंसात भीता नाच चलक, जानता जाना चाहते थे भगवान के चरणों में, माफी मांगना चाहते थे, लेकिन वो कंस के मथुरा के पंडित थे ये लोग और कंस के स्पेशल थे, कंस के जान पहचान वाले और कहीं कृष्ण से मिले हैं, उसको प्रणाम किए हैं, तो फिर कंस और बात करेगा हम पर भी और उस पर भी हमारे साथ। इसलिए कंस के डर से जाना चाहते थे प्रणाम करना, माफी मांगना, लेकिन वहाँ नहीं गए और यहीं रहकर हृदय से माफी मांगे, क्षमा मांगे कृष्ण से, और कृष्ण के सखा सब यज्ञ पत्नियों का प्रेम से लाया हुआ भोजन पाए और सब गायों को लेकर नंद भवन की ओर गए। और ये सब ब्राह्मण उस यज्ञ में, क्योंकि उनकी विधि अधूरी थी अभी इनके दो, तो इन लोगों ने पूरी किया और प्रसाद तो फिर से बनाया होगा, उसका लिखा नहीं है इसमें, लेकिन तो समझ जाना चाहिए फिर बनाया। सबसे बड़ा प्रसाद कृष्ण प्रसाद मिल गया था कृष्ण प्रेम का। और ये पत्नी अभी खुश थी कि चलो सुधरी गया मंदिर हरे अवश्य कथा हम बोल ना नहीं पड़े, नहीं तो पहले छुप छुप के करना पड़ता था इन लोगों को, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम तो ठाकुर जी ने सॉल्व कर दिया है। और इस तरह कृष्ण के कीर्तन कथा में ब्राह्मण पत्नियों का जीवन दिया और अगले जन्म में फिर कृष्ण की गोपियों बनकर कृष्ण को पाए, ऐसा टीकाओं में आशीर्वाद दिया है। क्योंकि भगवान की जो मनोरथ है भगवान पूर्ण करते हैं। तो इस तरह ये यज्ञ पत्नियों का पावन पवित्र प्रसंग है, बहुत विशुद्ध और कृष्ण प्रेम भक्ति से भरा है। एक स्त्री होकर इस तरह का त्याग और इस तरह का प्रेम, इसीलिए तो सुखदेव जी उस ऋषियों की सभा में इन महिलाओं इन स्त्रियों का गुण गा रहे हैं। तो जैसा कल हमने कहा था कि कुछ भी हो जीवन की अवस्था, कृष्ण प्रेम परम संपत्ति है, कृष्ण भक्ति, फिर वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, महत्व कृष्ण भक्ति का है। निर्धन हो, निम्न कुल में हो, कुरूप हो, गरीब हो, कोई अर्थ नहीं रखता, महत्व भगवान को भक्ति से और प्रेम से भगवान के दरबार में। और हमें चाहिए श्री प्रभुपाद की इस पावन संस्था में है तो इस तरह भागवत को और ग्रंथ भागवत या भक्त भागवत इनका आश्रय संग करते हुए अपने आप को भी इस लेवल तक उठाना चाहिए कृष्ण प्रेम और शुद्ध भक्ति के। क्योंकि करोड़ों योनियों से युगों से हम लोग अलग अलग शरीरों में घूम रहे हैं, अब इसमें भी घूम ही रहे हैं। ये तो कुछ गुरु ब्रह्मांड भ्रमित हो गए कि वैष्णव के संग में आ गए और कुछ कुछ साधना में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो काल को समझता है, समय को, कि समय जा रहा है, कितना बचा पता नहीं, और ये चांस गया तो फिर पता नहीं कहाँ क्या। तो अभी शरीर ठीक है, बुद्धि ठीक है, कोई भरोसा नहीं कल कौन सा रोग आ जाए। आज कुछ नहीं होता, कल रिपोर्ट कराओ कुछ ना कुछ गड़बड़ निकले, कभी कुछ भी ना आ सकता है परिवार में, शारीरिक मानसिक आर्थिक कुछ भी, क्योंकि ये संसार है दावानल। इसीलिए कल पर या परसों पर भरोसा नहीं करना, आज जो वर्तमान हमारा शरीर बुद्धि है उसी में भजन कर ले, प्रतिदिन 16 माला को जपना है, पता नहीं कल सूर्य हो गया ना, अवसर मिला या नहीं। भक्त होता है जो एटलीस्ट जो साधना बताई सीखी है उनको क्रम से करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए उल्टा, लेकिन जितना है उतना को। और सबसे दुर्लभ बात वैकुंठ में भी जो नहीं है वो वस्तु हमें यहाँ मिली है चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद की कृपा, वो है भक्तों का संग, जो देवताओं को स्वर्ग में भी नहीं मिलता है। और ऐसे भक्तों का संग मिला है तो ऐसे भक्तों के प्रति आदर रखना, उनको सेवा करना और उनके संग से भक्ति में आगे बढ़ना, ये अमूल्य चांस है। लेकिन हम इसको नहीं समझेंगे इसको बढ़िया से तो इसी भक्तों का अनादर अपराध, और फिर भक्ति में जो भक्ति पोषण के लिए था उसी से हम भक्ति में गिरे। तो स्वभाव और कर्म के अनुसार किसी में गुण होते हैं किसी में दोष भी होते हैं, लेकिन भक्ति एक ऐसा गुण है कि इसके सामने दूसरे दोष कुछ भी नहीं। सूर्य उगता इतना प्रकाश है कि छोटे छोटे कुछ महत्व नहीं रखता ना, तो कोई भी भक्त में आवे कुछ तो दोष होंगे ही होंगे, उसको कहाँ देखना है, गुणों को देखना है। और फिर भी वो भक्त है, भगवान का है, हरि नाम कर रहा है, इसलिए उसको आदर देना है। हो सकता है कि आप इतना विपरीत हो कुछ हो तो आप उनके नजीक या संग इतना नहीं कर सकते, लेकिन आदर सबके प्रति है, द्वेष किसी से नहीं करना है, चाहे कैसा भी भक्त, कोई भी भक्त निंदा या द्वेष का पात्र नहीं है, भले हमारे संघ का पात्र नहीं है, लेकिन प्रणाम और आदर के पात्र तो सभी। ये सिद्धांत है हमारा गौड़ीय धारा का, कहीं किसी जगह नहीं लिखा गया कुछ भी भक्त करे उससे आप द्वेष करो या उसकी निंदा करो, ऐसा कहीं राइट नहीं लिखा। हाँ ये लिखा गया कि अगर उसकी आचरण ठीक नहीं है तो आप उनको फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन उसको आदर या प्रणाम या उसके अंदर भी भगवान और उसकी भक्ति का महत्व तो देखना ही पड़ेगा ना।
हरिनाम कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो कुछ भी है लेकिन वो जो करता है वो आप नहीं कर पा रहे, है ना, कुछ तो गुण है ना, तो उन गुणों पर ही नजर होनी चाहिए और भगवान के संबंध से उसको भी आदर देना। और इतना ही दया आ रहा है तो उस भक्त के लिए प्रार्थना करना बांके बिहारी से, प्रभु उनको भी शुद्ध मति दीजिए, सुधारिए उनको, ना कि कुछ उल्टा रिएक्शन करना, भगवान से प्रार्थना की जाए उनका भी। उमा संतन को यह बढ़ाई मंद करत करत, संत उसे कहते हैं जो जिसका बुरा करे बुरा करने वाले का भी भला करे। तो भक्त से बढ़कर कुछ नहीं, हमारे हमारी गौड़ी है क्या, प्रत्येक वैष्णव परंपरा में भगवान से भी बढ़कर भक्त है। अगर अवसर मिला तो भगवान साइड नहीं चाहिए लेकिन भक्त चाहिए। ये बात जिस दिन समझ में आ गई ना, भगवान आपके हृदय में आ जाएंगे। भक्त को जब आप मान देना है उसकी महत्ता समझ जाएंगे, क्योंकि विश्व से भी बढ़कर कोई है तो वैष्णव, और उन वैष्णवों को प्रसन्न करना, उनकी सेवा करना, ये भगवान को प्रसन्न करने का सरल उपाय है। लेकिन उनके भक्तों से द्वेष करके, उनकी निंदा करके, उनके दोष देख के हम कब भी कृष्ण को कुछ नहीं करते। तो हमें दोषों से बचना है, निकालना है अपने दोष। ये देखिए ब्राह्मण रो रहे हैं कि हमारा जन्म बेकार है, हमारी विद्या बेकार है, सब कुछ, फिर भी ये बड़े भाग्यवान है। क्यों? जिस दिन उस किसी को भी अपने दोष और गलती समझ में आ जाए वही दिन उनका सौभाग्य का। आज उसको समझ में आ गया कि हमारे हिंदी कवियों ने लिखा है, कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपना दोष। जब तुम्हें अपनी गलती दिखाई दे या समझ में आ जाए, समझो कि आज गुरु की और बांके बिहारी की कृपा हो गई। लेकिन हमारा दुर्भाग्य हमें दिखता नहीं, कोई कृपा करके दिखाए तो फिर उसका दुर्भाग्य उसी दिन चालू कर देंगे। जब हमें समझ में आ जाए कि ये मैं ठीक नहीं किया, ऐसा मुझे नहीं शोभा देता, ऐसा गुरु नहीं चाहते, ऐसे भगवान को, ये जिस दिन समझ में आ जाए, समझो यही कृपा है। और जिस दिन आपको दूसरे के दोष दिखाई पड़ते हैं, ये माया की बड़ी कृपा हो रही है आप पर, ध्यान दो फंसाने की कृपा को समझिए। हम लोग उल्टा समझते कि अपने हारा लगी बीजा वहां माया दाम थे अपनी पर बहुत कृपा कृपा नहीं कृपा का स्वरूप उल्टा होता है। कृपालु एक अपना दोष देखता है, दूसरे के दोष देखता है, ये कृपा है भक्त की। दोष देखना ही सबसे बड़ा दोष है। हमसे कोई पूछे मुझे ने दोष क्या, दूसरे का दोष देखना, यही उसका दोष तो है ही है, लेकिन तुम देख रहे हो तुम्हारा पहले। और किस किस को सुधारनेगा रहेगा, धीरे धीरे प्रेम देकर सेवा देकर। गुजराती माँ कहते हैं, विरोधी ने वालो लागे ने वैष्णव के, मरो पछी राखे रोवी पड़ेगी ना से। कृष्ण के भक्त ने भगवान को भी रुला दिया है हरिदास ठाकुर ने, प्रहलाद ने। हम उस पावन परंपरा में केवल सहना है, केवल सबका भला चाहना, और सब कुछ करते करना क्या है, सेवा और साधन, सत्संग हरि कथा से, यही जीवन। तो इस बात को अगर आप लोग समझते हो तो संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग हमारा जब ठीक से करेंगे नियम से, और आज्ञा में जो सेवा दी जाती है उसको करने का पूरा प्रयास करेंगे, और सत्संग को बढ़िया से सुनेंगे पढ़ेंगे, उसके अपने मन को भागवत में रमाएंगे। और वाणी से मन से शरीर से कभी कोई भक्त नाराज हो या उसको दुख लगे ऐसा काम जीवन में कभी नहीं, कोई हमसे दुखी हो जाए उसमें भी भक्त तो क्या फायदा है, भक्ति में क्या मतलब रहा है, सोचना चाहिए भक्ति। आप कुछ सकते तो कुछ लोग ऐसे हम अच्छा करते तो भी नाराज होते, तो भी आप संभालिए उसे, फिर भी क्षमा मांगे। कभी कभी प्रैक्टिकली बोल देना पड़ता है, डांट देना भी पड़ता है पद पोजीशन या संस्था के अनुसार, फिर भी हृदय में दुख होना चाहिए कि मैं क्यों डांट, जबकि उनकी गलती थी और उसको सुधारने के लिए डांटा, फिर भी डांटने पर दुखी होना चाहिए। ये नहीं कि मैं तो बरोबर बरोबर तो किया ही नहीं है, तुम्हारा अधिकार ही नहीं वैष्णव करना, लेकिन उसका भला करने के लिए डांटा, हंसता के अच्छे के लिए डांटा तो अच्छा किया, लेकिन हृदय में तो दुखी होना चाहिए कि मैं क्यों ऐसा। फिर दूसरे तीसरे दिन जाकर फिर उसके उल्टी जगह माफी मांग समा के भाई जी दो उसको समझा देना तो माफ हो जाता, नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे ऐसी भावना, तो धीरे 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 फिर आप बिगड़ते जाओ। फिर आप अपने आप को महान मानते मानते गलतियां देखते देखते खुद इतने गलत हो जाओगे कि गुरु भी नहीं सुधार पाएगा, क्योंकि इनपुट जो होगा वही तो स्टोर होगा ना, दोष दोष सब दोष ही देख रहे हो तो क्या आएगा अंदर, पूरा दोष का गोडाउन हो जाओगे, फिर कुछ हो नहीं सकता, फिर आउट हो जाएगा। तो जो भी है, इस तरह भागवत की मैं कुछ इतना व्याख्या भी नहीं कर पाया, लेकिन मुझे एक आनंद मिला कि तीन दिन में इसमें कितने श्लोक है, 52 है, लेकिन मैं शायद 30-35 श्लोकों को बोला यहाँ, और उसी का केवल अनुवाद किया, अनुवाद करते चला, और उसमें कुछ कुछ बातें महाराज से सुनी थी या कुछ पढ़ा, तो उस पर मैं केवल भाव बताया, एक्सप्लेन किया। तो आप सभी माताओं का ऋणी हूँ कि आप लोगों ने मुझे सेवा में लगाया, और कुछ त्रुटि हो तो फिर भी क्षमा है, मानता हूँ। और आप सभी से निवेदन है कि बस इसी तरह बांके बिहारी से प्रेम करिए, और बांके बिहारी के भक्तों के प्रति आदर रखिए, और अपने आप को उसी भक्त ग्रंथ भागवत की सेवा में लगाए रखिए। और हम जैसे तो यहाँ पर पंडित है, भक्त है, ऐसा दिखाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बोलना ही सब कुछ नहीं होता, जीवन में होना चाहिए, लेकिन हम बोल इसीलिए रहे कि आप लोग आशीर्वाद दो कि हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा आ जाए, क्योंकि भक्तों के सामने हमारे गुरु जी कहते इसीलिए बोला जाता है कि वो लोग कृपा करके कुछ आशीर्वाद दे तो हमारे जीवन में कुछ भागवत आ जाए, कृपा से आ जाए या भय से आ जाए। आपके सामने बोले तो आपके सामने तो साधु रहना पड़ेगा, घर वाले तो सब जानते हैं हम कैसे, लेकिन आपको तो लगेगा ही सर, तो भय से साधु है या फिर कृपा से साधु है, फायदा तो है बोलने में, तो इसीलिए इस तरह बोलते रहते हैं। फिर भी कुछ क्षमा, कुछ गलती हो तो ग्रंथ भागवत भक्त भागवत क्षमा करे। और ये यज्ञ पत्नियों का बड़ा उज्ज्वल प्रेम भाव है, मैं पूरा नहीं जानता, न व्यक्त कर पाया, फिर भी कुछ त्रुटि रह गया है, पत्नियां भी क्षमा करें, यज्ञ पत्नियां कहना उनको भी अच्छा नहीं लगता, कृष्ण पत्नियां क्षमा करें। और धन्यवाद आप सभी माताओं को, प्रभु जीओ को भी, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे।
नमस्ते नरसिंहाय, Oh, ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹದೇ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರಾದ ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ ಗೌರಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ
મહત્વ સમજાયું કે બ્રાહ્મણ પત્નીઓ નાનેથી જ શ્રવણ કર્યું કૃષ્ણ વિશે, જયારે એમને ખબર પડી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવ્યા છે, એનામાં એટલો બધા પ્રેમ જાગ્યો કે લોકો બધા નાતા સંબંધ તોડી અને ભગવાન પાસે જાય છે. સ્ત્રીઓના ગુણ બતાવ્યા હતા, સ્ત્રીઓ માટે ક્ષમા સહનશીલતા એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જે ગુણ એમ કે આપણા ઘરને પણ સ્વર્ગ બનાવી દે છે. અને લાસ્ટમાં ભક્તના ગુણ જે પ્રભુજી એ બતાવ્યા એ પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આપણે બધી માતાઓ સુંદર કૃષ્ણ પ્રભુને બહુ જ આભાર માનીએ છીએ, અને આપણે તો કોઈ આશીર્વાદ દેવા લાયક પણ નથી, મહામંત્રનો સહારો જેમ કાલે લીધો તેમ લઈ ત્રણ વાર મહામંત્ર બોલશું કે જેથી પ્રભુજી ઉપર એમના ગુરુના અને કૃષ્ણના આશીર્વાદ ખૂબ ખૂબ ઉતરે અને ફરીને ફરી આપણને આવીને કથા સંભળાવે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે
તમે બધા આશીર્વાદ આપવાને લાયક છો ને આપો,
અને આ ત્રણ દિવસમાં અમારાથી કઈ પણ ભૂલ થઈ હોય તો અમને માફ
કરજો.
કૃષ્ણ પ્રભુ કી
જય, ભગવાન મહારાજ કી જય.
બધા બેસો, પ્રસાદ છે, કીસી પણ પ્રસાદ સુનો.
હા પ્રસાદ એક હોય છે,
મારો પ્રસાદ એક
હોય છે. કોઈ નથી તો આપો કી પ્રભુ પ્રસાદ પ્રસાદ.